इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, मतलब ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां एक पूरा समाज अचानक किसी अमक, किसी छोटे समूह के खिलाफ खड़ा हो गया।
हाँ, और ऐसी स्थिति की कल्पना करना ही सिहरन पैदा कर देता है।
फुल, जहां पुराने दोस्त रातों रात दुश्मन बन जाए, आपका व्यापार का बहिष्कार हो जाए और सत्ता की समर्थन से संपत्तियां तक छीन ली जाए।
ये एक बहुत भयानक स्थिति होती है।
वही तो जब चारों तरफ से ऐसा घोर विरोधी माहौल बन जाए तो कोई भी हाशिए पर धकेला गया समूह अपना वजूद कैसे बचाता है? मतलब क्या वे छिपकर बैठ जाते हैं या परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं?
देखिए, इस तरह का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान की रीढ़ तोड़ सकता है।
सही बात है।
जब राज्य की सत्ता, बहुसंख्यक समाज की सोच और अर्थव्यवस्था, ये तीनों चीजें किसी एक समूह को कुचलने के लिए एकजुट हो जाएं, तो वहां टिके रहना केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं रह जाती।
हाँ, वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकता।
बिल्कुल, ऐसे भयानक दबाव के बीच सर्वाइव करने के लिए, मतलब अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, किसी बहुत ही असाधारण और मजबूत सामाजिक ढांचे की जरूरत होती है। एक ऐसा ढांचा जो भारी हमलों को सह सके।
और यहीं से आज की हमारी इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस ज्ञान यात्रा का केंद्र डॉक्टर डेविड ए. डिसिल्वा का एक बेहद दिलचस्प व्याख्यान है,
जो कि हिब्रू ग्रंथ के अंतिम अध्याय पर आधारित है।
बिल्कुल, हिब्रू के 13वें अध्याय पर। आमतौर पर लोग जब भी किसी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के पन्नों को पलटते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ नियमों और कर्मकांडों की एक नीरस सी सूची होगी,
जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है।
हाँ, लेकिन जब हम इन ऐतिहासिक और धार्मिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ये अध्याय कोई आम धार्मिक उपदेश नहीं है।
एकदम सही कहा आपने।
ये हाशिए पर धकेल दिए गए एक समुदाय के लिए सामाजिक अस्तित्व बचाए रखने का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। मतलब ये असल में एक सर्वाइवल मैनुअल है।
यही एक बहुत ही सटीक नजरिया है। अक्सर विद्वान इस 13वें अध्याय को मुख्य संदेश के बाद जोड़े गए कुछ अतिरिक्त फुटनोट्स या सामान्य सलाह की तरह देखते हैं।
हाँ, जैसे कि बस अंत में कुछ बातें जोड़ दी गई हों।
वही, लेकिन डॉक्टर डी. सिल्वा अपने व्याख्यान में बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि यह हिस्सा पूरे ग्रंथ के मुख्य तर्क का ही एक स्वाभाविक और तार्किक निष्कर्ष है।
अच्छा।
हाँ, इस पूरे व्याख्यान में जो एक विचार सबसे ज्यादा गूंजता है वो है ईश्वर के प्रति असीम कृतज्ञता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कृतज्ञता केवल प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं है।
तो फिर ये किस रूप में है?
इसे सीधे तौर पर एक व्यवहारिक एक्शन प्लान में बदला गया है या सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में कैसे जीना है।
तो ये व्यावहारिक एक्शन प्लान किस तरह काम करता था ये समझना बहुत जरूरी है। दस्तावेजों के अनुसार जब ये समुदाय बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया था तो उनके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उनका अपना आपसी जुड़ाव बन गया,
जो कि लाजमी है।
बिल्कुल, यहाँ लेखक दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीक शब्दों पर जोर देता है। पहला है फिलाडेल्फिया, जिसका अर्थ है भाईचारे का प्रेम, और दूसरा है फिलोसेनिया, मतलब अजनबियों या अतिथियों का सत्कार करना।
अगर हम इसे उस समय के बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो उस प्राचीन ग्रीक रोमन समाज में भाईचारे और मित्रता के नियम पहले से मौजूद थे।
हाँ, अरस्तु और प्लूटार्क जैसे दार्शनिकों ने इस पे लिखा है ना।
बिल्कुल, उन्होंने मित्रों के बीच प्रेम, संपत्ति साझा करने और एकजुटता के आदर्शों पर बहुत विस्तार से लिखा था। लेकिन अरस्तु की मित्रता की अवधारणा मुख्य रूप से समान स्तर के लोगों के बीच थी,
मतलब समान हैसियत, समान संपत्ति वाले लोग।
हाँ, स्टेटस बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस ईसाई समुदाय ने जो क्रांति की वो ये थी कि उन्होंने इन आदर्शों को खून के रिश्तों और सामाजिक हैसियत की दीवारों से बहुत आगे निकाल दिया।
वाओ।
उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को, जिन्हें बाहरी समाज ने बेदखल कर दिया था, अपना परिवार मान लिया।
ये तो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस नेटवर्क की तरह लग रहा है। मतलब जब हम अतिथियों के सत्कार की बात सुनते हैं तो आज के दौर में ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है।
हाँ, जैसे किसी को चाय पर बुलाना।
बिल्कुल, लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि ये उस वक्त कितना खतरनाक था। हिब्रू के लेखक जेनेसिस के 18वें और 19वें अध्याय का उदाहरण देते हैं, जहां अब्राहम और लूत ने अजनबियों का सत्कार किया था जो असल में स्वर्गदूत थे।
ये बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है।
और उस दौर में जब आप राज्य के रडार पर हों, किसी अजनबी या यात्रा करने वाले प्रचारक के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने का सीधा मतलब था अपनी जान जोखिम में डालना, राज्य की नजरों में खुद को विद्रोही घोषित करना।
ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा जोखिम था। और देखिए, ये जोखिम केवल अतिथियों तक सीमित नहीं था। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली निर्देश है कि जेल में बंद लोगों को ऐसे याद रखना है जैसे कोई खुद उनकी चमड़ी में हो।
मतलब पूरी तरह से सहानुभूति,
सहानुभूति की चरम सीमा। उस रोमन साम्राज्य में अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह या राज्य के खिलाफ जाने के आरोप में जेल में था, तो उससे मिलने जाना, उसे खाना देना या उसका समर्थन करने का अर्थ था
खुद को राज्य का दुश्मन घोषित करना।
बिल्कुल, अधिकारियों की नजर में आप भी उसी अपराध के भागीदार मान लिए जाते थे। इसके बावजूद ये समुदाय अपने कैदियों को मरने के लिए नहीं छोड़ रहा था।
और पता है ये नेटवर्क जमीन पर कितना मजबूत और प्रभावी था? इसका एक बहुत ही हास्यप्रद लेकिन ठोस ऐतिहासिक प्रमाण हमें व्यंग्यकार लूसियन की कहानी में मिलता है।
हाँ, द पासिंग ऑफ पेरेग्रिनस।
वही लूसियन दूसरी शताब्दी का एक गैर ईसाई लेखक था। उसने पेरेग्रिनस नाम के एक ढोंगी दार्शनिक की कहानी लिखी है। पेरेग्रिनस जब जेल गया तो उसने ईसाइयों के इस निस्वार्थ सेवा भाव का जमकर फायदा उठाया,
क्योंकि उसे पता था कि वो लोग मदद करेंगे।
बिल्कुल, लूसियन लिखता है कि कैसे समुदाय के विधवाएं और अनाथ पेरेग्रिन्स के लिए जेल के बाहर इंतजार करते थे, जेलरों को घूस देते थे ताकि उसके साथ सो सकें और उसके लिए विशेष भोजन लाते थे।
और लूसियन ये सब ये बताने के लिए लिख रहा था कि ये लोग कितने मूर्ख हैं।
हाँ, कि कोई भी इनका फायदा उठा सकता है।
लेकिन ये ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लूसियन का उद्देश्य भले उनका मजाक उड़ाना रहा हो, लेकिन अनजाने में उसने इतिहास के लिए एक ऐसा दस्तावेज छोड़ दिया जो इस समुदाय की अकल्पनीय ताकत को प्रमाणित करता है।
कैसे?
ये दिखाता है कि उनका ये आपसी प्रेम और समर्थन ढांचा इतना गहरा और संगठित था कि एक बाहरी व्यक्ति भी उसे आसानी से देख सकता था।
सही बात है।
जब एक उत्पीड़ित व्यक्ति को ये पता होता है कि उसके पीछे उसका पूरा समुदाय एक चट्टान की तरह खड़ा है जो जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा, तो राज्य की कोई भी जेल या यातना उसे मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकती।
तो ये उनका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार था।
बिल्कुल।
उन्हें कैसे तोड़ सकता था?
यही वो सवाल है जो हमें इस चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है।
हाँ, क्योंकि स्रोत सामग्री यह स्पष्ट करती है कि इस नेटवर्क को तोड़ने वाली ताकतें सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थी, सबसे बड़ा खतरा उनके अपने भीतर से पैदा हो सकता था।
बिल्कुल, आंतरिक खतरा।
और शायद इसी कारण लेखक वैवाहिक निष्ठा बनाए रखने और व्यभिचार से दूर रहने पर इतना जोर देता है।
देखिए, इसे सिर्फ एक नैतिक या धार्मिक नियम के तौर पर देखना एक भूल होगी। इसे उनके अस्तित्व के नजरिए से समझना होगा,
सर्वाइवल के नजरिए से।
हाँ, व्यभिचार एक समुदाय के सबसे करीबी बुनियादी और अंतरंग रिश्तों को नष्ट कर देता है, जिस पूरे भूमिगत नेटवर्क का वजूद ही एक दूसरे पर अटूट भरोसे और पारिवारिक भावना पर टिका हो।
तो वहां अगर परिवार के भीतर ही धोखा होने लगे।
बिल्कुल, अगर एक पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है तो बाकी समुदाय उस पर अपनी जान की सुरक्षा का भरोसा कैसे कर सकता है? रिश्तों का टूटना सीधे तौर पर उनके उस सुरक्षा कवच को तार तार कर सकता था।
यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वैवाहिक निष्ठा के तुरंत बाद लेखक उनके सबसे बड़े दुश्मन का जिक्र करता है, और वो रोमन साम्राज्य नहीं है,
वो पैसे का मोह है।
जी हाँ, पैसे का मोह। स्रोत हमें हिब्रू के 10वें अध्याय की याद दिलाता है, जहाँ ये बताया गया था कि समाज ने इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए इनकी संपत्ति छीन ली थी। समाज शास्त्र में इसे अनडीवियंसी कंट्रोल टेक्निक कहा जाता है।
हाँ, डीवियंसी कंट्रोल। जब बहुसंख्यक समाज किसी विद्रोही सोच या अल्पसंख्यक समूहों को दबाना चाहता है तो सबसे पहले उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाती है,
उनकी दुकानें जला दी जाती हैं,
उनका पुश्तैनी घर छीन लिया जाता है, व्यापार बंद करवा दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थका देना है कि वे हार मान ले।
लेकिन यहाँ लेखक का जवाब बहुत ही रणनीतिक है। वो उनसे कहता है कि पैसे के मोह से मुक्त हो जाओ।
और ऐसा वो क्यों कहता है?
वही तो मैं सोच रही थी, अगर किसी का सब कुछ छिन गया है तो वो उसे वापस पाने की इच्छा क्यों ना रखे। आज की आधुनिक पूंजीवादी मानसिकता तो यही सिखाती है कि सुरक्षा बैंक अकाउंट और संपत्ति में है, मतलब बड़े खलिहान बनाना, ज्यादा पैसे जमा करना।
देखिए, क्योंकि अगर वे अपनी खोई हुई संपत्ति और सामाजिक रुतबे से मोह रखेंगे तो वे उसे वापस पाने के लिए समाज के साथ समझौता करने लगेंगे।
वो डरने लगेंगे।
बिल्कुल, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति बचाने में लगा है वो जोखिम नहीं उठा सकता, वो किसी अजनबी को शरण नहीं दे सकता। धन से मोहभंग होना वास्तव में उनकी आजादी का घोषणा पत्र था।
वाह।
इसलिए लेखक उन्हें ड्यूटरोनोमी और भजन संहिता की प्राचीन पंक्तियों की याद दिलाता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
तो जब उन्होंने संपत्ति का मोह छोड़ दिया और इस बात पर भरोसा कर लिया कि अब ईश्वर उनके साथ है, तो इंसानी विरोध का डर पूरी तरह से खत्म हो गया।
उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।
ये मनोविज्ञान का एक अद्भुत पहलू है, लेकिन जब संपत्ति नहीं है, समाज का समर्थन नहीं है और हर दिन अनिश्चितता से भरा है, तो मन में सवाल उठता है कि स्थिरता कहाँ से मिलेगी।
ये हमें तीसरे और बहुत ही गहरे विषय की ओर ले जाता है,
निरंतरता और छावनी के बाहर जाने का रूपक। स्रोत में बताया गया है कि उन्हें अपने पुराने नेताओं को याद रखना चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें क्लाउड ऑफ विटनेसेस कहा गया है।
हाँ, गवाहों का बादल।
और इसी के साथ हिब्रू 13:8 की वो पंक्ति आती है, ईसा मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है।
इस पंक्ति की गहराई को समझने के लिए हमें उस दौर के दर्शन को समझना होगा। डॉक्टर डी सिल्वा यहाँ डियो क्रिसोस्टोम नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक का हवाला देते हैं।
अच्छा, उनका क्या मानना था?
डियो क्रिसोस्टोम का मानना था कि इंसानों में कोई स्थिरता नहीं होती। मानव स्वभाव इतना चंचल और परिस्थितियों का गुलाम है कि उस पर भरोसा करना मूर्खता है।
मतलब जो दोस्त आज साथ है, कल स्वार्थ के लिए बदल सकता है।
बिल्कुल। इस गहरे अविश्वास और सामाजिक उथल पुथल के माहौल में हिब्रू का लेखक ये राजी क्रांतिकारी दावा कर रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चरित्र और जिसके वादे कभी नहीं बदलते।
समाज बदल रहा है, सत्ता बदल रही है, लेकिन मसीह नहीं बदलता।
यही वो लंगर था जिसने उस समुदाय की नाव को उस भयानक तूफान में स्थिर रखा।
और शायद इसी स्थिरता को बनाए रखने के लिए उन्हें उन विचित्र शिक्षाओं और भोजन के पुराने नियमों से बचने को कहा गया,
जो उन्हें वापस उस पुरानी व्यवस्था की ओर खींच सकते थे।
हाँ, लेकिन इसके बाद लेखक एक ऐसा रूपक इस्तेमाल करता है जो अनजो सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है और साथ ही सबसे ज्यादा विद्रोही भी है।
छावनी के बाहर जाना।
बिल्कुल। लेविटिकस 16 के प्रायश्चित के दिन के अनुसार जानवरों का खून पवित्र स्थान के अंदर जाता था, लेकिन उनके शवों को छावनी के बाहर ले जाकर जलाया जाता था।
और लेखक इसकी सीधी तुलना ईसा मसीह से करता है, जिन्हें यरूशलेम शहर के द्वार के बाहर सलीब पर चढ़ाया गया था।
पर एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा विरोध करना चाहूंगी। प्राचीन व्यवस्था में छावनी के बाहर का मतलब कोई शांतिपूर्ण या अच्छी जगह नहीं था ना?
बिल्कुल नहीं।
ये पूरी तरह से अशुद्धता, गंदगी और अपमान की जगह थी, जहाँ कोढ़ियों को रखा जाता था या अपराधियों को मारा जाता था। तो फिर लोग स्वेच्छा से उस अपमान को क्यों चुनेंगे?
यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सच्ची पवित्रता, धर्म और ईश्वर की उपस्थिति हमेशा सत्ता के गलियारों में, भव्य मंदिरों में या समाज के केंद्र में ही पाई जाती है?
तो क्या इसका कोई पुराना संदर्भ भी है?
हाँ, अगर हम एक्सोडस 33 के प्रसंग को याद करें, जब इसराइल के लोगों ने सोने के बछड़े की पूजा करके खुद को भ्रष्ट कर लिया था, तब मूसा ने अपना तंबू उस पूरी छावनी से बाहर काफी दूर ले जाकर लगाया था।
अच्छा।
और उसके बाद जिस किसी को भी ईश्वर की तलाश होती थी, उसे उस भ्रष्ट समाज को छोड़कर छावनी के बाहर आना पड़ता था।
तो लेखक यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चाल चल रहा है। क्या वे उस अपमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे?
बिल्कुल। वे कह रहे हैं कि समाज ने जिस जगह को हाशिए पर धकेल दिया है, जिसे अशुद्ध घोषित कर दिया है, असल में वही जगह अब ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जगह बन गई है,
क्योंकि मसीहा वही है।
हाँ, जब समाज आपको बाहर निकाल फेंकता है, तो आप रोने या वापस अंदर जाने की भीख मांगने के बजाय ये कहते हैं कि असली पवित्रता तो वैसे भी बाहर ही है।
ये तो गजब का माइंड गेम है। इससे समाज का वो हथियार जो अपमान और शर्म के जरिए उन्हें तोड़ना चाहता था, पूरी तरह से बेअसर हो जाता है।
वो अपमान अब एक सम्मान का प्रतीक बन जाता है।
लेकिन अगर ये समुदाय छावनी के बाहर आ गया है, अगर उनके पास अब कोई पारंपरिक मंदिर नहीं है, कोई वेदी या ऑल्टर नहीं है, तो वे अपनी धार्मिक क्रियाएं कैसे करेंगे?
यही वो बिंदु है जहां पुराने कर्मकांडों की जगह नए प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं।
तो हम इस चर्चा के चौथे हिस्से में आ गए हैं, नया बलिदान। पुराने नियमों में पशु बलि का बहुत महत्व था, लेकिन भजन संहिता 50 में पहले ही ये तार्किक सवाल उठाया जा चुका था कि क्या ब्रह्मांड का रचयिता सच में जानवरों का मांस खाता है?
ये सोचना ही हास्यास्पद है ना?
बिल्कुल। इसलिए हिब्रू का ये अध्याय एक नई व्यवस्था देता है, जहां पशु बलि की जगह दो नई चीजों ने ले ली है।
और वो क्या है?
पहला है स्तुति का बलिदान, यानी अपने होठों से सार्वजनिक रूप से ईश्वर के नाम को स्वीकार करना। जो उस माहौल में सीधा विद्रोह था।
हाँ, बिना डरे नाम लेना।
और दूसरा है अच्छे काम करना और अपनी चीजें एक दूसरे के साथ साझा करना।
इस बदलाव की गहराई को महसूस कीजिए। जब वे लोग अपनी बची कुची संपत्ति और भोजन को उन लोगों के साथ बांटते हैं जिन्हें समाज ने बेदखल कर दिया है, तो वे केवल कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहे होते हैं।
तो वे क्या कर रहे हैं?
वे सीधे तौर पर ईश्वर को एक ऐसा बलिदान चढ़ा रहे होते हैं जिससे ईश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। इसका मतलब यह है कि किसी जरूरतमंद के साथ रोटी साझा करना यरूशलेम के भव्य मंदिर में बलि देने से कहीं अधिक पवित्र कार्य बन गया।
इसने तो उनके दैनिक जीवन को ही पवित्र बना दिया।
बिल्कुल।
लेकिन तो इस सब का मतलब क्या है? धर्म के इतिहास में अक्सर यह बहस होती है कि क्या हम अपने अच्छे कामों से ईश्वर की कृपा खरीद सकते हैं?
ये सवाल अक्सर उठता है।
क्या ये सब अच्छे काम, ये सत्कार, ये संपत्ति साझा करना सिर्फ इसलिए किए जा रहे थे ताकि ईश्वर का कर्ज चुकाया जा सके? क्या ये एक तरह का कर्मकांड या वर्क्स राइटियसनेस नहीं बन गया?
नहीं, ऐसा सोचना इस पूरे दर्शन को गलत समझना होगा। डॉक्टर डिसिल्वा इस गलतफहमी को पारस्परिकता के चक्र के सिद्धांत से बहुत खूबसूरती से दूर करते हैं।
पारस्परिकता का चक्र मतलब सर्कल ऑफ रेसिप्रोसिटी।
हाँ, इसे ऐसे समझना चाहिए, अच्छे काम करके ईश्वर की कृपा को कभी खरीदा नहीं जा सकता। कृपा हमेशा एक तरफा पहल होती है जो ईश्वर पहले ही कर चुका है।
तो फिर ये अच्छे काम क्या है?
ये अच्छे काम उस अपार कृपा के जवाब में पैदा हुई कृतज्ञता का एक स्वाभाविक परिणाम है। ये कोई व्यापारिक लेनदेन नहीं है, इसे एक सुंदर नृत्य की तरह देखा जा सकता है, क्रिश्चियन लाइफ का एक डांस जिसे ईश्वर ने अपनी कृपा से शुरू किया है।
और यदि समुदाय वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता
तो पारस्परिकता का वो चक्र टूट जाता है और वो सुंदर नृत्य बिगड़ जाता है।
कृतज्ञता का नृत्य, ये वास्तव में एक बहुत ही सुंदर छवि है। और इसी प्रेम और कृतज्ञता के भाव के साथ ये ग्रंथ अपने अंत की ओर बढ़ता है।
हाँ, जहाँ प्रार्थनाओं का जिक्र है।
लेखक उन नेताओं के लिए प्रार्थना करने को कहता है जो आत्माओं की रखवाली में अपनी रातें गुजारते हैं।
मतलब वो नेता जो सिर्फ हुक्म नहीं चलाते बल्कि नींद खोकर अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता करते हैं।
और इसके साथ ही वो ईश्वर को शांति का ईश्वर और ईसा मसीह को भेड़ों का महान चरवाहा कहकर संबोधित करता है।
ये रूपक प्राचीन ग्रंथों यशाया और यहेजकेल से लिया गया है। ये उन डरे हुए लोगों को याद दिलाता है कि भले ही वे आज हाशिए पर हैं,
भले ही समाज रूपी भेड़िए उन्हें घेर कर खड़े हैं,
लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला चरवाहा बहुत महान और शक्तिशाली है।
और पता है, पत्र के बिल्कुल अंत में कुछ खबरें और अभिवादन दिए गए हैं।
जैसे
टिमोथी की रिहाई की खबर, जो संभवतः जेल से छूटा है, और इटली के लोगों की तरफ से भेजा गया अभिवादन।
देखने में ये सिर्फ सामान्य व्यक्तिगत संदेश लगते हैं।
हाँ, लेकिन उस समय के माहौल में इनका क्या महत्व था?
इनका महत्व किसी संजीवनी से कम नहीं था। ये छोटे छोटे संदेश यह दर्शाते हैं कि ये ईसाई आंदोलन कोई स्थानीय घटना नहीं था, बल्कि इसकी प्रकृति वैश्विक थी,
ग्लोबल नेचर।
बिल्कुल। कल्पना कीजिए, आप किसी छोटे से शहर में एक अंधेरे कमरे में छिपकर डर के साए में ये पत्र सुन रहे हैं, और तभी आपको पता चलता है कि आपका एक मुख्य नेता जेल से रिहा हो गया है,
और दूर इटली में बैठे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं।
हाँ, ये एहसास उनके अंदर ऊर्जा का संचार कर देता होगा कि वे अकेले नहीं हैं, वे एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा हैं जो रोमन साम्राज्य से भी ज्यादा मजबूत है।
ये पूरी चर्चा इस बात का एक शानदार प्रमाण है कि प्राचीन ग्रंथ केवल इतिहास के मुर्दा दस्तावेज नहीं होते, वे आज के दौर के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
मैं पूरी तरह सहमत हूँ।
ये अध्याय आज के आधुनिक समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम आज अपनी सुरक्षा कहाँ खोजते हैं? हमारी धारणा है कि एक बड़ा बैंक बैलेंस, एक अच्छी नौकरी और समाज की स्वीकृति हमें जीवन के हर संकट से बचा लेगी।
लेकिन जब कोई वास्तविक संकट आता है, जैसे कोई महामारी या व्यवस्था चरमरा जाती है, तो क्या ये कागजी चीजें काम आती हैं?
या फिर वो सच्चा मानवीय जुड़ाव काम आता है, जहाँ लोग एक दूसरे की तकलीफ को अपनी चमड़ी में महसूस कर सकें?
ये अध्याय हमें हमारे सुरक्षा के भ्रम को पहचानने की चुनौती देता है। उन प्राचीन लोगों के पास न धन था, न सत्ता का समर्थन, और न ही कोई सुरक्षित भविष्य।
फिर भी उनके पास एक दूसरे का ऐसा गहरा साथ था जो किसी भी बाहरी हमले से ज्यादा मजबूत साबित हुआ।
उनकी असली ताकत कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि उनका साझा विश्वास और एक दूसरे के प्रति अडिग जिम्मेदारी थी।
इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस गहरी चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना उचित होगा जो शायद हमें अपने ही जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे।
बिल्कुल, सोचने वाली बात है।
हमने विस्तार से देखा कि कैसे उस भयंकर दमनकारी माहौल में उत्पीड़न और खतरे ने उन शुरुआती लोगों को जीवित रहने के लिए एक परिवार की तरह एकजुट होने पर मजबूर कर दिया।
उनका भाईचारा उस उत्पीड़न की आग में तपकर कुंदन बन गया था।
तो सोचने वाली बात यह है, क्या आधुनिक जीवन की जो अपार सुख सुविधाएं हैं, जो हमें बिना किसी संघर्ष या विरोध के एक बेहद सुरक्षित और आरामदायक माहौल देती हैं, क्या उन्होंने अनजाने में ही सही उस सच्ची सामुदायिक भावना को मार दिया है?
ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है।
क्या आज का ये चरम आराम ही हमारे गहरे आपसी जुड़ाव और सच्चे भाईचारे के लिए उस प्राचीन दमन से भी बड़ा खतरा बन गया है? जब हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे की सख्त जरूरत ही नहीं है, तो क्या हम वास्तव में एक दूसरे के साथ होना भूल गए हैं?
शायद आराम ही असली खतरा है।
इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस विस्तृत और रोमांचकारी ज्ञान यात्रा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए और नई चीजों को खोजते रहिए।